ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டு 1 சாப்டர் நம்பர் 1 டெக்ஸ்ட் நம்பர் 1. குரு ஹர் கரங்க கி அசீம் கிருபா ஹே கி ஆஜ் ஹமே ஸ்ரீமத் பாகவதம் மஹாபுராண கோ பிராரம்ப கர்னே கா அவசர் பிராப்த ஹுவா ஹே. வாஸ்தவ மே பக்தோ, ஹமாரே கர்ம் இத்னே சுந்தர் ஹோ நஹீ சக்தே कि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करने का अधिकार प्राप्त कर सकें, लेकिन ये वास्तव में जितने भी आज तक हमने आशीर्वाद पुण्य कर्म जितने इकट्ठे किए हैं, जितने जितने महात्माओं की कृपा हम पर हुई है, उन सब कृपाओं का फल एकत्रित होकर हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने के रूप में उनकी कृपा जो है वो फलीभूत हुई है. इसलिए श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा को प्रारंभ करने से पहले आज तक जिस जिस को भी प्रणाम किया है और आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनको एक बार फिर से अपने हृदय में स्मरण करके उनसे कृपा की याचना करते हुए आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करेंगे, ताकि जो उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है उसको हम सहज रूप से ग्रहण कर सके. तो श्रीमद् भागवतम कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी और श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के चरणों में शत शत वंदन. तत्पश्चात हमारे प्रिय श्री श्री राधा कुंज बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कृपा की भीख मांगते हैं कि यहाँ पर गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ बोलने के समर्थ हुए हैं. तत्पश्चात जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण आज से 528 वर्ष पूर्व श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसे परम करुणा वरुणालय कलयुग पावन अवतार परम करुणामयी नितई गौरंग महाप्रभु को उनके श्री चरणों में प्रणाम और वंदन करती हूँ, जिनकी कृपा से इस समुद्र रूपी शास्त्र के सिद्धांत को समझ सकूं और आप सबके सामने उपस्थित कर सकूं. तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम को समझने वाले चैतन्य महाप्रभु के अनुकम कृत्य श्रीमद् भागवत को समझकर टीका लिखने वाले जिसमें प्रमुख श्रीपाद श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिला जीव गोस्वामी और सब आचार्यों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना है कि वे जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझे हैं उसी प्रकार में भागवतम को समझ सकूं और आप सबको समझा सकूं. तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनके तात्पर्य को पढ़कर केवल हम ही नहीं, श्री प्रभुपाल जी की कृपा से आज समग्र विश्व में करोड़ों करोड़ों लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसे परम कृपामयी श्री प्रभुपाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. इसके बाद हमारे गुरु महाराज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय कीर्तनानंद स्वामी श्री भक्तिपाल जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा और आशीर्वाद के सहारे से हम कुछ बोलने के समर्थ हुए हैं और उसी के साथ साथ हमारे अनेकों शिक्षा गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया, शास्त्र पढ़ना सिखाया और भक्ति को जीवन में किस प्रकार आचरण करना है उसके विषय में सिखाया. ऐसे हमारे समस्त शिक्षा गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और इसके साथ साथ मैं आप सब धर्म प्रेमी श्रद्धालु भागवत प्रेमी भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ. कृपया आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवतम कथा को प्रकट कर सकूं। एक वक्ता के ऊपर श्रोताओं का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। आप सब लोग हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए ताकि श्रीमद् भागवतम को आपके सामने उपस्थित कर सकूं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 1। कृपया इन परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भक्तों, यह प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवतम महापुराण का सार है। यदि कोई यह प्रथम श्लोक समझ लेता है तो वो इस योग्य हो जाता है कि वो आगे श्रीमद् भागवतम महापुराण को ग्रहण कर सके। अन्यथा यदि कोई प्रथम श्लोक को ही न समझ पाए तो फिर भले पूरा भागवतम महापुराण ही क्यों न समझ ले, क्यों न पढ़ ले, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये नींव है, ये बेस है, ये बुनियाद है श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम की रचयिता वेद व्यास जी है और वेद व्यास जी हम कलयुग के मानवों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना करते हैं, किंतु कथा प्रारंभ करने से पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण करते हैं। अब मंगलाचरण में क्या होता है कि हम गुरु और भगवान को अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, जिनसे आशीर्वाद की उपेक्षा करके, ताकि हम जो कार्य करने वाले हैं वो मंगलमय हो, उसमें कोई अमंगल ना हो, वो अच्छे तरीके से संपन्न, निर्विघ्नता से संपन्न हो। अब देखते हैं श्रील वेद व्यास जी जो कि हमारे समस्त शास्त्रों के रचयिता हैं, जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद हैं, वो सब लिखने के उपरांत अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की। तो देखते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम श्लोक में वो किसकी वंदना करते हुए मंगलाचरण करते हैं। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। वेद व्यास जी की कलम चल रही है और प्रथम शब्द, प्रथम बात जो उन्होंने लिखी है प्रथम श्लोक में, प्रथम लाइन जो है वो मेरे साथ उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात हे वसुदेव के पुत्र, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी बुद्धि की बात है। शास्त्र लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, समस्त शास्त्रों का सार जानने वाले वेद व्यास जी हैं, और वेद व्यास जी जिनको प्रणाम करते हैं वही भगवान हो सकते हैं, अथवा भागवतम में जो लिखा है वही सत्य हो सकता है। भागवतम में श्री कृष्ण का जन्म तो 10वीं स्कंद में होगा, लेकिन आज भागवत कथा को प्रारंभ करने से पहले ही उन्होंने किसको प्रणाम किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं। आगे भी लिखते हैं, कृपया शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हम इस प्रथम श्लोक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे यदि आप मेरा साथ देंगे तो। वेद व्यास जी कहते हैं, जन्माध्यस्य यतोन वयादितरतश चार्थेष्वभि ज्ञः स्वरात्। फिर से पढ़ें, जन्माध्यस्य यतोन वयादितरतश चार्थेष्वभि ज्ञः स्वरात्। जन्माध्यास्ययतोन् वयादितरतश चार्थेष्वभिज्ञः स्वराक् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहुयन्ति सूरयः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहुयन्ति सूरयः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहुयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। एक बार फिर से पूरा श्लोक एक साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माध्यास्ययतोन् वयादितरतश चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहुयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। शब्दों का अर्थ देखिए। ओम यानी मेरे प्रभु, नमः नमस्कार करता हूँ, भगवते भगवान को, वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को, और आगे जन्मादि यानी जन का मतलब होता है उत्पत्ति, आदि मना पालन तथा संहार, अस्य इस प्रकट ब्रह्मांड का यानी वो कृष्ण जो इस प्रकट ब्रह्मांड का पालन संहार तथा उत्पन्न करते हैं, यतोन जिससे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से। अब कुछ चीजों को वो डायरेक्ट से पालन जन उत्पन्न और प्रलय करते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि किसी के जरिए से, जैसे ब्रह्मा जी से संसार की उत्पत्ति करवा दी, शिव जी से संसार का लय करवा दिया। तो अन्वयात का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रत्यक्ष स्वयं अपने नाम से उत्पन्न किया, और इतरतः मान अप्रत्यक्ष यानी कि उनको इंग्रेडिएंट्स फिर भी भगवान ने दिए हैं, जो भी ये 24 तत्व हैं वो भगवान ने प्रोवाइड किए, लेकिन कार्यभार उनको दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भगवान ही कर रहे हैं ना। च यानी तथा अर्थेषु, अर्थेषु का मतलब उद्देश्य में अभिज्ञ पूर्णतया अवगत, और ये जब भले वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष कर रहे हैं लेकिन विज्ञ पूर्णतया अवगत हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनको कार्यभार दे दिया और खुद इससे कुछ भी उनको मतलब सोच नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ पूर्णतया अवगत हैं, स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, वो स्वयं सब कुछ कर सकने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को सेवा का मौका देने के लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो स्वराट हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, तेने प्रदत्त किया ब्रह्म वैदिक ज्ञान हृदय हृदय की चेतना च या जो आदि कवये प्रथम जीव के लिए, यानी कि उन्होंने संसार के प्रथम जीव के हृदय में ज्ञान वैदिक ज्ञान जो है वो उनको दिया। प्रथम जीव कौन, आदि कवये प्रथम जीव, इसका मतलब है ब्रह्मा जी को जिन्होंने ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान वैदिक ज्ञान दिया। और आगे लिखा मोहयन्ति, मोहित होते हैं यत, जिनके विषय में सूरयः बड़े बड़े मुनि तथा देवता, यहाँ पर भगवान की जो माया है उसके विषय में बता रहे हैं वेदव्यास जी कि वो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं हृदय में, लेकिन बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े देवता भी उनकी माया से छल जाते हैं, उनकी माया से मोहित हो जाते हैं। कैसे मोहित होते हैं, तेजः अग्नि वारी मन जल मृदाम यानी पृथ्वी यथा, जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया कारण यत्र जहां पर त्रिसर्ग अर्थात सृष्टि के तीन गुण सृष्टिकारी शक्तियां अमृषा यानी सत्यवत। अब किस तरह से वो भ्रमित हो जाते हैं, मोहयन्ति सूरया, किस तरह होता है, जिस प्रकार अग्नि में जल तथा जल में थल देखकर कोई माया द्वारा मोहित हो जाता है। हम देखते हैं जल के अंदर कैसे थल यानी सूखा कैसे बीच में होता है, हैरत होती है कि पानी है और नीचे के क्या होता है, धरती है, वो सूखी है और इतना सारा पानी समुद्र में होता है। तो इसको देखकर या फिर अग्नि में जल देखकर कैसे मोहित हो जाता है कोई बंदा, कि ये आग है जो कि सबको जला देती है और पानी इसको बुझा देता है, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया में पानी यूज हो रहा है ना, H2O होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे अग्नि में जल को देखकर या जल में थल को देखकर कोई मोहित हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। और कैसे मोहित हो रहा है, ये त्रिसर्गो, त्रिसर्गो का अर्थ होता है प्रकृति के तीन गुण यानी सृष्टिकारी शक्तियां, अमृषा यानी सत्यवत, वो हमें ऐसा लगता है होता सब कुछ माया है, भगवान की माया है और हमें सब कुछ सत्य लगता है कि नहीं यही सब कुछ है। जैसे स्वप्न में हम जब देख रहे होते हैं सपना, तो सब कुछ सपना ही होता है, लेकिन हम कितना दुखी हो रहे होते हैं उसके अंदर और मतलब हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। उसी तरह से संसार भी, ये जो संसार है ना वो मिथ्या नहीं अशाश्वत है, लेकिन हर चीज हमें सत्य दिखती है क्योंकि भगवान की माया, भगवान की त्रिगुणों त्रिगुणमयी माया से हम मोहित होते हैं। लेकिन आगे बहुत ही सुंदर बात कही, धामना स्वेन सदा निरस्तक वह कम, धामना यानी समस्त दिव्य सामग्री के साथ जो उनका धाम है भगवान का, वहां पर स्वेन अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कुहकम मोह को, यानी कि अपने धाम में सदैव उपस्थित रहते हैं और ये मोह जो कि संसार को मोहित करता है उनके धाम में ये अटैक नहीं कर सकता। ये भगवान का जो धाम है वो इस समस्त त्रिगुणमय माया से मोह से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्वच्छ है। और वही भगवान जो उस धाम में रहते हैं उनके विषय में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्य का मतलब होता है जो सत्य है, परम जो सबसे परम हाईएस्ट है, सुप्रीम पर्सनालिटी है, धीमहि। धीमहि का मतलब होता है ध्यान करते हैं। हमने श्रीमद् भागवतम को अक्सर सुना होगा उनके श्लोकों को, लेकिन शास्त्र कहता है अगर श्रीमद् भागवतम का अर्थ सहित उनके श्लोकों के शब्दों के अर्थ के सहित अगर उसका आस्वादन किया जाए तो हमें उसका जो लाभ कृष्ण प्रेम की का जो आस्वादन प्राप्त होगा ना वो बिल्कुल अलग ही होगा। क्योंकि ऐसे शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र को एक एक शब्द की गहराई को समझना, शास्त्र कहता है यस्य भागवतम शास्त्रम वाच्यत अर्थनोदिशम। अगर कोई इस भागवत को अर्थ के साथ शब्दों के एक एक अर्थ के साथ श्रवण करता है या पढ़ता है तो कहते हैं जन्म कोटि कृतम पापम नश्यत नात्र संशय। उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध उसी समय क्षय हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम ताप त्रयोन्मूलनम। वास्तव में जो जानने योग्य शास्त्र है वो यही श्रीमद् भागवतम है। वेद्यम वास्तवमत्र, इसके अतिरिक्त और कुछ जानने के लिए समझने के लिए पढ़ने के लिए है नहीं। क्योंकि हमारे जीवन का क्या मकसद है कि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करें और यह एकमात्र शास्त्र एक ऐसा है जो कि हमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में उनके नाम रस गान उनके माधुर्य प्रेम के विषय में बताता है। तो शिवदम इसी से हमारा कल्याण होगा। तापत त्रयोन्मूलनम, मूल से समस्त तापों का समस्त अज्ञानता का समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। और आगे कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर। क्योंकि वेदव्यास जी ने अपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद समस्त शास्त्रों को लिखने के बाद उन्होंने जो निचोड़ लिखा है जो शास्त्रों का सार लिखा है वो श्रीमद् भागवतम के रूप में हमें दिया। और आगे कहते हैं किम वा परैरीश्वर, उसके अतिरिक्त और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है और उसे क्या होने वाला है। यहाँ पर तो वेदव्यास जी ने हद कर दी लिखते हुए कि तीनों तापों का खत्म होना, करोड़ों करोड़ जन्मों के जन्म कोटि कृतम पापों उनका नाश होना तो केवल ये साइड वाला फल है, केवल बोनस है। वास्तविक फल क्या है, क्या होने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने से, शास्त्र कहता है सद्यो रिद्ध्य वरुद्ध्य ते तकृति भी। सद्यो का मतलब होता है भगवान जो है फौरन तुरंत उसी क्षण हृदय हृदय के अंदर अरुध्यते दृढ़ हो जाते हैं। भगवान हृदय के अंदर कैद हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं, फिर उस हृदय से चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। भगवान को कैद कर देता है ये भागवतम आपके हृदय में। और वेद व्यास जी भागवतम की महिमा को बढ़ाते हुए यहाँ तक कह दिए कि भगवान को हृदय में कैद करने के लिए, भगवान को अपने हृदय में बंदी बनाने के लिए आपको श्रीमद् भागवतम पूरा सुनने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करना है, शुश्रूषु तत्क्षणात्, केवल सुनने की इच्छा कर दो मात्र। यदि आपके हृदय में श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने की तीव्र इच्छा भी प्रकट हो जाती है ना तो भगवान स्वयं आके कैदी बनना स्वीकार कर देते हैं आपके हृदय में। तो आप सब कितने महान, करोड़ों करोड़ों जन्मों के फल के प्रताप। यहाँ पर शास्त्र तो ये भी बोलता है आप समस्त पुण्य कर्म कर लेते हो, अपने समस्त पिछले जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अपने धर्म का पालन कर देते हो ना, फिर ही कभी आपके हृदय में भागवत महापुराण को श्रवण करने की इच्छा प्राप्त होती है, क्योंकि शास्त्र में 1.2.8 में लिखा हुआ है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद् यदि रतिम शम एव हि केवलम। यदि आपने अपने धर्म का पूरी तरह से अनुष्ठान किया है और आप समझते हो कि मैंने बिल्कुल सही तरह से कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपके हृदय में भगवान के पवित्र नाम, पवित्र कथा श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है, नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, फिर तो आपने सत्यानाश कर दिया अपने इस जीवन का, क्योंकि वो तो सिर्फ श्रम ही हुआ, जिस तरह गधा श्रम करता है वैसे किया। लेकिन यदि आपके हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने की इच्छा मात्र प्राप्त हो गई है, तो समझो सारे धर्म कार्य कंप्लीट कर दिए, सबका सारे शुभ कार्य कर करके उसका जो फल प्राप्त होता है ना, वो हृदय में भागवतम श्रवण करने की इच्छा के रूप में प्राप्त होता है, यही शास्त्र कहता है। अनुवाद देखिए, हे प्रभु, हे वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप में प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। अब हम इस परम पवित्र श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में वेदव्यास जी नमस्कार करते हैं, क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। ये जो लास्ट का वर्ड है ना, सत्यम परम धीमहि, ये मूल विषय है इस पूरे श्लोक का, कि मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ, जो परम सत्य है। अब जब नमस्कार करते हैं तो उस वस्तु के दो लक्षण कहे जाते हैं। लक्षण मतलब जिसके वर्णन से उस वस्तु का पता चले, उसको लक्षण कहते हैं। अब यहाँ वेदव्यास जी क्या कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। अब धीमहि कहाँ है ना, धीमहि का क्या मतलब होता है, हम ध्यान करते हैं। वास्तव में श्लोक तो वेदव्यास जी लिख रहे हैं, लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं कि मैं अकेले उसका ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मेरे जितने भी शिष्य हैं जो आज तक इस शास्त्र को पढ़े हैं या फिर जो आज के बाद इस शास्त्र को पढ़ेंगे, तो उसको वही करना है, सत्यम परम धीमहि, उसी सत्य को का ध्यान करना है। हम सब मिलकर ध्यान करते हैं, वरना ध्यायेम, अगर खाली अकेले का होता है ना तो संस्कृत में कहते हैं ध्यायेम, लेकिन यहाँ पर लिखा है सत्यम परम धीमहि, यानी मैं और मेरे समस्त अनुयायी उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो परम सत्य कौन है, यह प्रश्न उठता है ना, तो परम सत्य कौन है, उसका आंसर यहाँ पर वेदव्यास जी पहली लाइन में देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि वो परम सत्य कौन है जो वसुदेव के पुत्र वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, वही परम सत्य हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ। अब वेदव्यास जी क्योंकि समस्त शास्त्रों के रचयिता हैं, भागवत लिखने वाले हैं, और वेदव्यास जी जिसको प्रणाम करते हैं वही भगवान हो सकते हैं, अथवा भागवतम में जो लिखा है पहली लाइन में वही सत्य हो सकता है। अब सत्यम परम धीमहि, सत्य जब कहते हैं तो उसके साथ सब कुछ आता है। वास्तव में सत्य के तीन फेस होते हैं। पहला तो वो सर्वकाल व्यापी, यानी कि हर जगह पर सर्वकाल, जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी है, हर जगह पर असीम है, अनादि से है और अनंत तक रहेगा, वो सत्य है। सत्य का पहला फेस कि वो सर्वकाल व्यापी है, हर जगह पर होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। और सत्य का दूसरा फेस है आनंद, सत्य सॉरी चित्त, चित्त का मतलब होता है मूर्तिमान चेतना, जिसके अंदर जड़ांश कुछ भी ना हो, यानी कि वो नख से शिक तक चित्तगण हो, चिन्मयता जिसका, यानी कि उसको सब कुछ खबर हो, हर चीज का पता हो, उसके अंदर जड़ता नहीं हो। जड़ता दुख का कारण है, यानी कि अज्ञान दुख का कारण है, लेकिन जो सत्य है वो चित्त है, वो ज्ञानमय है, प्रकाशमय है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भी उस सच्चित आनंद का एक अंश है, लेकिन वह आत्मा तो कहते हैं बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर हमारे हृदय में है। उसके बाद बचा क्या, पूरा का पूरा शरीर जड़ है, मैटर है। तो ये जड़ जो है, मैटर जो है, वो कभी भी चित्त नहीं है। चित्त का मतलब होता है जो जिसको सब कुछ पता हो, जो पूरी तरह से चेतन हो। और सत्य का तीसरा फेस है आनंद, आनंद घन। वो आनंद घन है, भगवान से अक्षय आनंद निकलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान के अंदर आनंद कहीं से आता है, वो साक्षात आनंद का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। जिस प्रकार से सूर्य को प्रकाश कहीं से लेना नहीं पड़ता, बल्कि वो स्वतः प्रकाशमान है, उसी तरह से भगवान को आनंद कहीं से प्राप्त करना नहीं पड़ता, वह साक्षात मूर्तिमान आनंद है। अर्थात सत्यम परम धीमहि से क्या समझ आया कि वो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, उसको प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ? क्योंकि उनको प्रणाम करने से ही मैं आनंदित हो सकता हूँ। शास्त्र कहता है रसमय व लब्धा आनंदी भवति। जब व्यक्ति रसमय, भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, तो जब उनको कोई प्रणाम करता है, उनकी सानिध्य में कोई आ जाता है, तभी वो आनंदी हो सकता है। नाल्पे सुखम। अब सत्य है जो कि नित्य होना चाहिए, सर्वकाल में होना चाहिए, क्षय कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं, आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है, वो तीनों काल में विद्यमान रहती है। जैसा भगवान श्री कृष्ण 2.12 में बताते श्रीमद् भगवत गीता में, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, तुम न रहे हो, या ये राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा कभी भविष्य में होगा कि हम ना रहे। इसका मतलब है आत्मा वो इटरनल है, तो उसको सुख प्राप्त कराने वाली जो वस्तु है, वो उस सुख का स्रोत भी इटरनल होना चाहिए। इसलिए उपनिषद कहता है न अल्पे सुखम भूमाय व सुखम। जीव नित्य है तो उसको नित्य वस्तु, शाश्वत वस्तु ही सुख प्रदान कर सकती है। भूमाय व सुखम, नित्य वस्तु ही सुख दे सकती है, अशाश्वत वस्तु उसको सुख नहीं दे सकती है। और सत्यम परम धीमहि कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेव। केवल भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। इसके अतिरिक्त जो भगवान श्री कृष्ण, अब इस श्लोक में आगे बताते हैं जो भगवान के दो लक्षण बता रहे हैं। क्या? एक तो भगवान का स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है कि उसकी प्रकृति कैसी, यानी वो बना कैसे है। जो विशेषता उस वस्तु के साथ सदैव रहती है, उसके बगैर उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यानी वो उसकी क्वालिटी जो होना उसके लिए अनिवार्य है, हर समय होनी चाहिए उसके साथ। प्रकृति का मतलब होता है वो वस्तु किस चीज से बनी है। अब भगवान किस से बने हैं, जो हमने अभी पढ़ा, भगवान के जो सत्य के तीन फेस, क्या सत्यम परम धीमहि के विषय में हमने पढ़ा, सत चित आनंद। भगवान सत्य है, इटर्नल है, चित है, ज्ञान नहीं है, आनंद है, आनंद स्वरूप है। ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। तो पहले वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण बताने से पहले, ये तो लास्ट में बताया ना सत्यम परम धीमहि, उससे पहले तटस्थ लक्षण बताए। तटस्थ लक्षण क्या है, एक ऐसा लक्षण जो उसके अंदर हमेशा प्रकट हो, जैसे क्षमा, तटस्थ लक्षण का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा लक्षण जो उस चीज के अंदर हो लेकिन हमेशा प्रकट नहीं हो, दिखता नहीं हो। जैसे सूर्य में हर समय तेज होता है लेकिन हर समय नजर नहीं आता ना, सुबह के टाइम पर उसकी तपिश कम होती है, इवनिंग में भी बीच में उसकी तपिश तेज हो जाती है। उसके पास है तो सही, लेकिन जब मतलब समय के साथ आती है और जाती है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, वो उसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो संडे को घर में हो तो वो घर में आम लोग की तरह है ना कार्य करेगा। अगर उसके घर में मतलब छोटा छोटा कार्य कोई होगा, जैसे सफाई करना, सेटिंग करना, भले उसके पास कितना ही ज्ञान हो लेकिन वो ज्ञान हर समय प्रकट नहीं होगा। प्रकट कब होगा, जब वो बात करेगा किसी से, जब है ना अपने मतलब डिबेट करेगा किसी से, या फिर किसी को अपनी बात मनवाएगा, प्रचार करेगा, बताएगा, तब उसे पता चलेगा, तब लोग को पता चलेगा कि ये इसके अंदर गुण है। लेकिन उसके अंदर होता है, निकल ही जाता है, लेकिन हर समय दिखता नहीं है। ये होता है तटस्थ लक्षण। अब हमने इस श्लोक में भगवान के ना स्वरूप लक्षण के विषय में पढ़ा कि वो सच्चित आनंद है, और तटस्थ लक्षण क्या है भगवान का वो शुरू से हमें बताया जाता है। सबसे पहले पहला तटस्थ लक्षण है विश्व की सृष्टि। अब भगवान सच्चित आनंद है, वो समाप्त नहीं होते, वो अनादिकाल से हैं, इटर्नल हैं, चिन्मयी हैं, ज्ञानमयी, लेकिन उनकी जो सृष्टि है वो तटस्थ है, वो समाप्त हो जाने वाली है, अशाश्वत है, अनित्यम असुखम। तो ये जो अनित्य है, असुखम है, ये जो अशाश्वत लोक है, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, भगवान की विशेषता, भगवान की अद्भुत क्षमता का ज्ञान होता है कि भगवान ने किस प्रकार इस संसार को बनाया है और किस प्रकार ब्रह्मा जी को वेद बताए हैं। तो भगवान को समझने के लिए तटस्थ लक्षण जरूर समझने चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि भगवान किस तरह से कार्य करते हैं। उनकी अद्भुत शक्ति के विषय में यहाँ पर हमें बताया, जन्मादस्य यतोन वयादि तरतस्। जन्मादि यानी वो भगवान जो सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय और पालन करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, जो साकार भगवान है वो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है, यानी साकार। कुछ लोग की बुद्धि, इस संसार में लोग की बुद्धि इतनी सीमित है कि वो इस बात को नहीं पकड़ पाती है कि वो साकार भगवान है। वो तो सीमित होता है, साकार का मतलब होता है सीमित, एक जगह पर होने वाला। तो फिर वो इस पूरे संसार को किस तरह से उत्पन्न करता है, किस तरह से पालन करता है और किस तरह से उसका संहार करता है। इसका उदाहरण देते हुए आचार्यगण कहते हैं कि जैसे एक जगह पर कोई ना लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, तो उसको एक कैमरा जो है उसको है ना रिकॉर्ड करता है, और विश्व में जितनी भी जगह पर अगर केबल कनेक्शन है तो जितने भी टीवी हैं, जितने भी एलसीडीज हैं, उसमें वही कार्य, वही लाइव टेलीकास्ट एट टाइम हम लोग को दिख रहा होता है। यानी कि एक जगह पर है तब दिख रहा है ना, एक जगह पर उसका अस्तित्व है लेकिन हर जगह पर फैला हुआ है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। 10.9 में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि ये समस्त प्रकृति जो है वो मेरी आंख के इशारे से चल रही है। तो भगवान को एक एक जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है उस चीज का पालन संहार एवं उत्पन्न कराने के लिए। भगवान इच्छा करते हैं शास्त्र कहता है भगवान इच्छा करते हैं और हो जाता है, लेकिन साधारण जीवों की बुद्धि इस बात को नहीं पकड़ पाती है कि भगवान कैसे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, इसलिए भगवान को निराकार घोषित कर दिया जाता है। लेकिन भगवान का आकार है, भगवान का स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान की बनने वाली जो सृष्टि है उसका एक आकार है। तो फिर भगवान निराकार कैसे? भगवान के तीन फेज हैं, वो निराकार हैं, निराकार के रूप में समस्त सृष्टि को, सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हम सब जीवों के हृदय में विराजमान हैं, और भगवान का एक स्वरूप आनंदमय सच्चिद आनंद घन परमात्मा, सच्चिद आनंद घन भगवान के रूप में वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। और उसी धाम का इस श्लोक में भी जिक्र हुआ है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, उस धाम में जहाँ पर भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं वहां पर माया का असर नहीं होता। अब वही भगवान जन उत्पत्ति यानी कि पालन और संहार करते हैं, किस प्रकार करते हैं? अन्वयात, अन्वयात का मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट से करते हैं जैसे ब्रह्मा इत्यादि का, और इतरष्ट यानी उनको इनडायरेक्टली करते हैं, और ब्रह्मा जी को इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे, और उसके बाद क्या है विज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है वह सब कुछ जानते हैं। जब हम पैदा होते हैं इस संसार में आते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाते, लेकिन कृष्ण ने हमारे उत्पन्न होने से पहले, हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे जीवन के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब प्रोवाइड कर रखी हैं। माँ के स्तन में दूध बच्चे की उत्पत्ति के समय ही आ जाता, भगवान जानते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, उसको अभी दूध की आवश्यकता होगी, भगवान पहले से उसका इंतजाम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मनुष्य आता है इस संसार में, कोई मनुष्य अपने लिए सब कुछ लेकर आता है, खाना लेकर आता है, कपड़े लेकर आता है, जूता लेकर आता है पहनने के लिए इस संसार में, क्या वो ये सोचकर आता है कि मैं जब अब संसार में आऊंगा तो मुझे इस संसार में रहने के लिए धरती की आवश्यकता रहेगी, तो मैं थोड़ी सी मट्टी टोकरी में लेकर जाऊं, मुझे धरती बनानी पड़ेगी? हर चीज भगवान ने पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है। भगवान ने कितनी, हम कहते भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान कितनी सेवा करते हैं हमारी, कभी हमने सोचा? हम उत्पन्न होते उससे पहले ही माँ के स्तन में दूध डाल देते क्योंकि हम खाने के योग्य नहीं होते, दांत नहीं हमारे पास। उसके बाद हम बढ़ जाते तो भगवान हमारी सेवा करते हुए हमारी जो है ना इतना पावर हमारे अंदर लाते हैं, और दांत आते तो भगवान जानते कि भाई ये अब दूध से इसका गुजारा होने वाला नहीं, बड़ा हो गया है, तो उससे पहले अनाज पहले से प्रोवाइड कर रखा है कि बाद में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हर चीज जो हमें चाहिए होती है संसार में, भगवान श्री कृष्ण सबसे अभिज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस बना देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि इतनी ह्यूज व्यवस्था अब पूरी संपूर्ण सृष्टि को देना है, उधर जो पत्थरों के बीच में, पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे चींटी और कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खिलाते हैं, जंगलों में हाथी और शेर जो जितने पशु पक्षी हैं उनको भी देते हैं। कभी ये नहीं सोचते भगवान परेशान नहीं हो जाते, मैंने इतनी अब बड़ी सृष्टि बना दी है, अब मैं कैसे उसको जाके प्रोवाइड करूं? हर चीज जब तक हमारा जीवन है भगवान हमें बोलते सुलाते नहीं है भूखा, हर वक्त जो जो चीजें प्रोवाइड करनी होती है हम सबको वो सब भगवान देते हैं, और वो स्वराट है, स्वतंत्र है ये सब कार्य व्यवस्था पूरा करने के लिए, उनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं से कर सकते हैं, वो खुद से करते हैं हर चीज की व्यवस्था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो भगवान को नहीं मानते, इतना अज्ञान होता है उनके अंदर, वो बोलते हैं भाई हम भगवान को नहीं मानते, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बल पर कर रहे हैं, अपने पावर से कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसे उदाहरण देते हैं महात्मा गण, आचार्य गण, कि यदि उल्लू बोले कि सूर्य नहीं है, यहाँ पर सूर्य, क्योंकि उल्लू जो है वो रात को जागते हैं सुबह को सो जाते हैं, तो उन्होंने कभी सूर्य का दर्शन नहीं किया। तो कभी उल्लू सारे अपनी मीटिंग बुलाएं और बैठ जाएं और बोलें कि हाँ भाई देखो सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, लोग बस ऐसे ही बोलते हैं सूर्य है सूर्य है, लेकिन सूर्य होता नहीं है। तो फिर सारे जितने भी उल्लू बैठ के उस सभा में बैठे हुए हैं वो क्लैपिंग करेंगे, वाह वाह कितना नया इन्होंने सिद्धांत बनाया। उसी तरह से बेवकूफ संसार के लोग। वे बेवकूफ कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनके कहने से, जैसे अगर उल्लू कहते हैं कि सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य को इससे कोई परेशानी होती है कि ये तो मेरी बात, मेरी सत्ता को नहीं मान रहे, मुझे मान ही नहीं रहे हैं, और है ना मुझे कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे वो मुझे माने, या फिर मुझे किसी तरह से कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि उनका वोट मुझे मिले कि नहीं नहीं सूर्य है। उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सूर्य को कि कोई उल्लू बोलता है कि नहीं है नहीं है। तो उसी तरह से भगवान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसे मानता है या नहीं मानता है। यदि हम जीव यदि भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान की सत्ता को मानते हैं, भगवान को भगवान की शरणागति होते हैं, तो उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कल्याण हमारा होता है। और यदि हम नहीं मानते भगवान को, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, तो उससे हमारा ही अमंगल होने वाला है। इस संसार में भगवान ने सब कुछ जो भी बनाया है कितना अद्भुत है, एक एक चीज को यदि हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान ने कितनी कारीगरी, कितना सुंदर तरीके से भगवान ने ये सारे संसार का निर्माण किया। खाली अगर सूर्य को भी देखें तो ये सूर्य कितना अद्भुत है कि जब आने वाला होता है तो पूरा संसार रोशन हो जाता है। अगर एक दिन के लिए भगवान सूर्य ना, मतलब सूर्य को उत्पन्न ना करे, सूर्य को उदय ना करे, तो सारी सृष्टि की समस्त कैपेसिटी का खाली बल्ब बना दें हम, जब तक पूरी जितने भी पहाड़ हैं उनमें आग लगा दें, जितने भी दरख्त हैं वृक्ष हैं उन सब में, लेकिन दिन तब तक नहीं होगा जब तक सूर्य नहीं उगेगा, रात तब तक खत्म नहीं होगी। तो भगवान ने जो कुछ बनाया संसार में वो सब अद्भुत है, और भगवान हमारे हितैषी हैं। कभी कुछ हमसे रिजल्ट में मांगते नहीं इस संसार में। देखिए मनुष्य भगवान की दी हुई बुद्धि और भगवान के दी हुई इंग्रेडिएंट से कुछ बनाता है, जैसे अगर भगवान की दी हुई हवा को संतुलित करके वो एसी बनाता है, या फिर लाइटें बनाता है, या कुछ भी बनाता है, तो कितना हाई चार्ज लेता है। फिर भी कहते हैं हम हितैषी, लेकिन भगवान ने आज तक किसी चीज के लिए मांगा नहीं कि भाई मैं आपको इतना सारा ना सूर्य प्रकाश दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, और ये वायु दे रहा हूँ, और जो कुछ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका अगर कभी बिल चार्ज करके हमें भेज दें ये लो चालान और इसको भरो, आज तक तुमने इतना मेरी सृष्टि को भोगा है, तो क्या कोई जीव इस लायक होगा कि भगवान की इन चीजों के लिए भगवान को कुछ दे सके? क्योंकि हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ, अपना तो कुछ है ही नहीं। भगवान को सिर्फ सरेंडर करना, भगवान की शरण में आना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान की सेवा करना ही जीव मात्र का एकमात्र उद्देश्य है। हम कभी भगवान की कृपाओं का बदला नहीं दे सकते। भगवान की कृपा, भगवान की जो हमारे ऊपर एहसान है वो हम कभी चुका नहीं सकते। तो हम भगवान को धन्यवाद हर क्षण हर क्षण हर एक सांस के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो यहाँ पर आया स्वराट। स्वराट का मतलब होता है भगवान स्वतंत्र हैं दुनिया को चलाने में, उनका पालन करने में किसी की कोई हेल्प कर हेल्प की भगवान को आवश्यकता नहीं है। अकेले ही सृष्टि का पालन संहार करने में वह सक्षम है, और सृष्टि की हर एक वस्तु पर भगवान का कंट्रोल है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भगवान का कंट्रोल कैसे है? सृष्टि में तो इतने सारे अपराध हो रहे हैं, चोर चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, तो ये सब कंट्रोल कहाँ है? भगवान की ये व्यवस्था कहाँ, सही चल रही है या नहीं चल रही है? परंतु एक एक व्यक्ति के जीवन पर ईश्वर का कंट्रोल है। एक पलक भी नहीं झपका सकते एक व्यक्ति, लेकिन भगवान उसे स्वतंत्रता प्रोवाइड करते हैं कि तुम करो, तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर उसकी क्रियाओं को चालू कर सकते हैं? कोई बहुत ही बड़ा अगर कोई आदमी हो जिसके पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा खानदान हो, बहुत सारे डॉक्टर उसके साथ हो, लेकिन क्या वो फिर बोल सकता है कि भाई मुझे 2-4 महीने के लिए जिंदा कर दो? नहीं कर सकता। मनुष्य कहता है कि ईश्वर का कंट्रोल नहीं, तो क्या कोई डिपार्टमेंट है संसार में जो जीव को बूढ़ा कर रहा है? जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, रोज उसको तकलीफ आ रही है, दुख भोगने पड़ रहे होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक क्लेशों का सामना करना पड़ता है। यदि ये मनुष्य की, क्या मनुष्य ने, किसी ने ये डिपार्टमेंट खोला है आपको दुख प्रोवाइड करने का? ये भगवान की व्यवस्था है। मनुष्य तो हमेशा यंग रहना चाहता है, हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, हमेशा सुखी रहना चाहता है, लेकिन इस संसार में भगवान ने अपनी माया के द्वारा जो दुख आपको दिए हैं, क्या वो भगवान के कंट्रोल नहीं है? इस संसार में भले ही चलो ठीक है, चोर चोरी करते हैं, अब धन अर्जित करने के लिए गलत गलत रास्ते, गलत गलत तरीके करते हैं, वो उनको भगवान ने स्वतंत्रता प्रोवाइड की है, लेकिन यहाँ देखिए भगवान का कंट्रोल। मरने पर कोई भी अपना घर, बाइक, सोना, चेकबुक कुछ भी नहीं ले जा सकता। जो कुछ इस संसार का है भगवान बोलते रखो, एक सुई की नोक के बराबर चीज भी हम इस संसार से ले नहीं जा सकते। भगवान की यह व्यवस्था है। कोई बोल सकता है भगवान को कि भाई मैंने इतनी मेहनत की थी संसार में यहाँ अपना धन अर्जित करने के लिए, तो थोड़ा मेरे साथ रियायत करो, मुझे 2-3 लाख रुपए ले जाने दो यहाँ से। कह सकता है, जो कुछ संसार ने संसार से लिया वो यही संसार में देख कर जाता है, कुछ भी नहीं ले जाता सिवाय भगवान के नाम, भगवान की कथा श्रवण, भगवान के कीर्तन, भगवान की लीलाओं का श्रवण। इसके अतिरिक्त और कुछ आपके साथ चलने वाला नहीं है। केवल भगवान के साथ बिताया हुआ समय, केवल भगवान की भक्ति में बिताया हुआ समय ही आपके साथ चलने वाला है। तो क्या ये कंट्रोल नहीं है भगवान का इस संसार में, कि जो कुछ तुम अपने लिए करने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल करते हो, वो सारा का सारा रख के चले जाते हो, और जो भगवान के लिए करते हो वही लेकर जाते हो, और अगले जन्म में भी अगर आपको वापस से जन्म लेना है तो भी आपके काम वही आने वाला है जो कि आपने शुभ कर्म किएंगे, जो कि आपने भक्तिमय भगवान की सेवा में जो कार्य किए वही आपके साथ चलेंगे, बाकी सब तो अपराधों के रूप में दंडित किए जाओगे सारी चीजों के विषय में। आगे कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, वही भगवान है जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया। मोहयंती यत सूरयः, वह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, लेकिन आगे ही नेक्स्ट स्टेप ने बोला कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सूर जो है वो मोहित हो जाते हैं भगवान की इस लीलाओं को। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया लेकिन ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, तो फिर हम जैसे साधारण व्यक्ति के विषय में क्या कहना कि हम भगवान की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। तो ये भगवान की लीला अचिंत्य है, उसको उसका पार नहीं पाया जा सकता। जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, वो भी नैति नैति कहकर चुप हो जाते हैं, बोल नहीं सकते भगवान की अद्भुत लीलाओं के विषय में, भगवान की माया के विषय में। लेकिन धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि, वह सत्य है, परम है, आनंदमयी है, और उनके धाम में जहाँ पर वो रहते हैं, यहाँ पर भगवान के धाम के विषय में बताया गया है। यहाँ पर वेद व्यास जी इस श्लोक में एक सकारात्मक संदेश देते हैं कि भगवान जो है उनका एक धाम है, उनका एक लोक है जहाँ पर भगवान रहते हैं। मनुष्य को ना ये बात जाननी है कि भगवान का एक साकार रूप है जो अपने धाम में रहता है, क्योंकि निराकार तो कभी रिस्पॉन्स नहीं देगा, निराकार से कोई क्या प्रेम करेगा। अगर किसी ना व्यक्ति की एंगेजमेंट हो जाए और उससे पूछे कि भाई हाँ मैं, और उसको कहा है भाई अभी देखो तुम्हारी इंगेजमेंट होगी, अभी तुम्हें प्रेम करना है सिर्फ अपनी मंगेतर के साथ, तो बोले कि ठीक है मैं करूंगा, लेकिन वो दिखती कैसी है, उसका आकार कैसा है, साकार रूप कैसा है, तो उसको अगर बोले कि भाई वो तो निराकार है, तो बोलेगा निराकार से प्रेम कैसे कर सकता हूँ, निराकार तो कभी रिस्पॉन्स देखेगा नहीं, कभी पूछेगा नहीं कि जिंदा हो, मेरा भजन किया है, मर रहे हो, कुछ तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग भी नहीं होंगी, तो फिर उससे प्रेम का तो कोई संबंध ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर साकारात्मक संदेश देते हुए वेद व्यास जी हम सब पढ़ने वालों और सुनने वालों को ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि उसी परम सत्य जो कि अपने धाम में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, उसी को प्रणाम करना ही, उसी को नमस्कार करना ही, उसी की शरण में जाना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत समय लिया मैंने आप सबका, लेकिन ये प्रथम श्लोक ऐसा है जिसे मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं चाहती हूँ गुरु कृपा से आप सबको समझाऊँ। अभी हम इस श्लोक का तात्पर्य कल से स्टार्ट करेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से श्लोक को समझाया है और हम गुरु कृपा से इसको पूरा पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आप कृपया साथ रहिएगा ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। भले इस श्लोक को समझने में 2-3 दिन हमें लग जाए, लेकिन फिर भी ये बेस अगर हमारा अच्छा होगा ना, तो फिर हम आगे इसे अच्छा समझ सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।